நமோ சித்தாளம் நமோ ஆயிரியாரம் நமோ உபச்சாயாரம் நமோ லோய் சஸ்ஸாஹூரம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயந்த தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் தீன புவனமே சார் வீட்டு ராக விஜயானதா சிவ ஸ்வரூப சிவகார் நமோ தயோகி சம்ஹாரிகி हम लोग थर्ड ढाल पर थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे और चार तत्वों में हम मोक्ष तत्व तक डिस्कशन पर आ गए थे. किसी को इसमें अभी तक कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट?
अब तक वी आर गुड. हमने लास्ट क्वेश्चन जो रखा था जब हम 1 अप्रैल मिले थे तो आत्मा कर्म के फल को भोगता है वहाँ हमने छोड़ा था.
करेक्ट. तो और हमने देखा था कि आत्मा कर्म के फल को कैसे भोगता है, भोगता है
क्यों बंद. पहले हमने अपने दो क्वेश्चंस रखे थे, कर्म जीव कर्म को क्यों बंधता है और वो अपने पानी में स्विम करने का, ऑयल में स्विम करने का वो अपने.
करेक्ट. यस, तो हम एक्चुअली बेसिकली समझना चाह रहे हैं कि ये जो निर्जरा है और ये मोक्ष है, मोक्ष तत्व निर्जरा तत्व. तो मोक्ष में हमने देखा कि सकल कर्मते रहित अवस्था, जो सारे के सारे कर्म है उनसे रहित हो जाना, ये मोक्ष तत्व मोक्ष का प्रगटता है. तो हमने पहले सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन समझा, तो हम कर्म से बनते भी हैं कि नहीं है, तभी तो मोक्ष की बात आई थी. एंड देन वो क्वेश्चन आया कि हम कर्म के फल को भोगते हैं, कर्म को करते हैं या नहीं करते हैं, और इसका हमने फिर डिटेल में डिस्कशन सुना था पंचवर्षीय कायजी के आधार पर कि आत्मा कर्म के फल को नहीं भोगता, आत्मा अपने सुख दुख के परिणाम को भोगता है. लेकिन सुख दुख का परिणाम में निमित्त निमित्त संबंध बाहर का कर्म का उदय है, तो आत्मा व्यवहार से कर्म के उदय को भी भोगता है. ठीक है, तो ये वाले डिस्कशन में किसी को कोई डाउट था? ये जो हमने डिस्कशन हुआ था उस दिन, any doubt, any question?
नहीं
किसी को
नहीं लगता.
हाँ, वो करता, हमने ये देखा था कि आत्मा कर्म को करता कि नहीं करता. तो आत्मा कर्म को नहीं करता, उसमें वो करने की शक्ति ही नहीं है. तो आत्मा क्या करता है? आत्मा अपने राग द्वेष के परिणाम को करता है, उसमें वैभाविक शक्ति है, चारित्र नाम का गुण है. तो वैभाविक शक्ति के कारण चारित्र नाम का गुण विपरीत वैभावी परिणमन करता है, वो राग द्वेष करता है. उसके कारण ऑटोमेटिकली जो आजू बाजू के वातावरण में कर्म वर्गना है, कार्मिक डस्ट है, वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा के पास आती है और एक क्षेत्रावगार रूप से ठहर जाती है. अब वो क्या है कि देखो, सबसे कर्म जो है ना, ये सबसे सबसे ज्यादा सेफ चीज है. कर्म के बंधने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. और कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्र आप गाय में रहे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. प्रॉब्लम तब होती है जब ये कर्म जाने लगे. तो कर्म का काल पूरा हुआ, उसने अपनी स्थिति पूरी हुई, तो वो आत्मा से जाएगा. पर जाएगा तो वो आत्मा को फल देकर जाएगा. तो कर्म के बंधने और कर्म के सत्ता में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. हो सकता है मेरे पास बहुत सारा पाप कर्म बंधा हो सकता है, राइट? लेकिन वो आज तो उदय में नहीं आ रहा, तो सत्ता में तो जिसकी रुचि क्या है? राइट ये डेंजरस कब होगा ये जो पाप कर्म बंधा हुआ है, कि जब ये जाने को तैयार होगा, जब ये आत्मा से अलग होता है तो वह उदय देखकर जाता है, वह उदय में आता है। तो एक्चुअली द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, उसका आत्मा से अलग होना, निर्जरित होना। तो यदि वो विपाक निर्जरा वाला है, मतलब वो उदय देकर जा रहा है, फल देकर जा रहा है, then it's really dangerous, तब तो प्रॉब्लम है। और यदि फल दिए बिना जा रहा है तो वो बड़ा सुखद है, उसमें तो हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? ठीक है। तो जब वे आत्मा के साथ बंधा हुआ कर्म उदय में अपना फल स्थिति और अनुभव के हिसाब से देकर जाता है, तो वो फल उसी समय आत्मा के शुद्ध परिणाम में निमित्त होता है और आत्मा अपने शुद्ध परिणाम को भोगता है और कल्पना करता है कि मुझे इसके कारण दुख हुआ, इसके कारण दुख हुआ। हम ये नहीं सोचते कि हमने दुख महसूस किया इसलिए हमें लग रहा है कि दुख हुआ, और थोड़ी देर बाद यदि हम अपना ध्यान यहाँ से हटा देंगे तो फिर हम भूल भी जाएंगे कि हम परेशान हैं, और फिर अचानक से याद आएगा अच्छा ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, राइट? हेलो, किसी घर में दुख का प्रसंग बनता है, उनके यहाँ किसी का वियोग हो जाता है, राइट? हम सब ने इतना बड़ा जीवन जिया है तो हम सबके घरों में भी प्रसंग बन चुका होगा, राइट? बन चुका है। तो लाइक हम उसके बाद में सोचते हैं, तो जब वो प्रसंग बनता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, राइट? क्या हो गया, ये कैसे हुआ, ठीक है? बट उस प्रसंग को हुए 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, सब लोग रो रहे हैं, ठीक है? एंड अब वो सब कुछ हो गया, लाइक क्रिमेशन भी हो गया, एवरीथिंग इज डन। उसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर धीरे धीरे आपको भी समझ में नहीं आता कि यार आप परेशान तो हो रहे हो, बट थोड़े थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते हो, फिर आपको याद आता है अरे यार वो चले गए, और फिर आप परेशान होते हो, और फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर बात करने लगते हो, और फिर आपको याद आता है उनकी अब याद आ रही है। सो द क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो आपको दुख का परिणाम आ रहा है कब आ रहा है?
जब हमको वो याद आते हैं तभी तो हमारे मोह के
याद आते,
राइट?
या तो अच्छा, और उनके वियोग का कर्म का होता है कब कब है? वियोग तो हो गया, कर्म का उदय तो एक सा है अब उनके वियोग के बाद। ऐसा नहीं कि जब हम उनको भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा अभी, तब वो है यहाँ पर, जब वो नहीं है तो उनके वियोग जन्य दुख तो हमको होना था ना, लेकिन नहीं, तब नहीं हुआ, वो तो तब हुआ जब हमको पता पड़ा कि वो नहीं है। तो आचार्य कुंकुम देव सिंपली ऐसा कहते हैं वहां पर कि ये जीव कल्पना में अपने सुख दुख के परिणाम से दुखी होता है, कल्पना करता है और इसलिए दुखी होता है, ये सब कल्पना मात्र इसका सुख दुख का परिणाम है, ठीक है? और कई लोगों को कितना लंबा होता है, मतलब छोटी सी चीज उनकी कहीं खो जाती है और उनको लाइफ टाइम वो लगता है यार ये हमारे यहाँ इतना हो गया था, हमारे यहाँ ऐसा हो गया था, और बार बार उनको रिग्रेट होता है, वो नहीं घूमता तो, नहीं होता तो, ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो हुआ एक बार है, वो कर्म का उदय आया एक बार है, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचकर उतनी ही वेदना हम कल्पना में स्वयं को बार बार देते कि ऐसा क्यों हो गया, राइट? हुआ एक बार है, कर्म का उदय तो एक बार आया है, तो हमने उसके फल को भी एक ही बार भोगना था, लेकिन हम उसको बार 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 सोच सोच कर उतने ही दुखी बिना कर्म के उदय में भी बार बार होते हैं। ये सिद्ध करता है कि जिस कर्म के उदय में दुखी नहीं है उदय के संबंध में अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन, अपनी एक्सपेक्टेशन से जुड़ी है। तो ये एक्सपेक्टेशन तो कर्म ने नहीं करी, तो ये किसने करी? कि जीव ने स्वयं अपनी कल्पना से करी। तो जीव को सुखी दुखी करने वाला कौन हुआ? कि उसकी खुद की कल्पना। ठीक है।
हाँ, परंतु यहाँ यहाँ एक ये एग्जांपल वैसे समझ में आता है और वैसे थोड़ा यहाँ क्वेश्चन भी होता है कि जो जिसका वियोग हुआ जिसका वो उसके साथ वैसे तो उस वो तो उसका कर्म का उदय था, तो वो चला गया, तो वो हमको वो कर्म तो उसके वो कर्म का वो मुझे रिलेशन नहीं समझ में आता है कि जिसकी डेथ हुई तो उसका आयु कर्म पूरा हुआ, वो चला गया, परंतु हम तो हमारे मोह से याद करते हैं ना उसके, कि हमारा मोह कर्म का उदय बोलेंगे।
देखिए देखिए क्या होता है, ये जैसे कि आपको घर पर इतने सारे लोग मिले हैं, ये आपके भी साता बोले या असाता बोले, ये आपके भी अघातिया कर्मों के उदय में मिले हैं। ये सब हमारी भोग सामग्री है, ठीक है, बेटे हुए, मम्मी पापा हुए, ये सब कोई हमारे अघातिया कर्मों में हमको मिले हैं, ठीक है, और इनके स्वयं का भी आयु कर्म है, इसलिए वो लोग जी रहे हैं, राइट। बट अब दो काम एक साथ नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मेरे तो साता बीतने के कर्म में किसी का इष्ट का वियोग नहीं लिखा हो और मेरे किसी इष्ट वाले का आयु कर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब उसका आयु कर्म खत्म होगा ना, कितना सिस्टमेटिक है, आप ये समझिए, जब उनका आयु कर्म का खत्म होना है ना, तभी मेरे अघातीय कर्मों में इष्ट वियोग नामक असाता का उदय आना भी है। इन दोनों का टाइम एक है, और अकेली मेरा नहीं, मेरे परिवार में चार लोग हैं, तो इन चारों का अघातीय भी उसी हिसाब से आना है, और उसमें पांचवा ऐसा भी है जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं, वो वेट कर रहा है कि कब मरेगा, राइट। तो उसके साता का भी उदय तब है, उसके अनिष्ट वियोग का योग भी तब है, इष्ट वियोग वो पाप का उदय, अनिष्ट का वियोग वो पुण्य का उदय, राइट। जो दुश्मन है मेरा वो चला जाए, वो मेरा पुण्य है, जो मेरा प्रेम पात्र है, जो सगा संबंधी है, जिससे मुझे स्नेह है, वो चला जाए तो दुख का उदय है। तो इट्स ऑल रिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड है, ऐसा नहीं होगा कि मेरे पुण्य का उदय चलता रहे, साता का उदय चलता रहे और सामने वाला चला जाए, नॉट दैट वे इट विल हैपन। वो सब कुछ बंधा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई ये हमारा पाप का भी उदय है कि वो चले गए, और उनके आयु का भी अंत है कि वो चले गए, टू वे इट इज। लेकिन मेरे लिए वो गए हैं, उसमें उनके कर्म का उदय कोई काम का नहीं है, उसके लिए मेरा कर्म का उदय काम का है, ठीक है।
पर मैं मुझे है अनुभव जी, मुझे एक प्रश्न है कि अभी आपने बताया ना कि अगर कुछ खो गया, घड़ी खो गई, तो वो कर्म का उदय आया और वो हुआ, और बाद में जब आप उसको ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है, तो जो बाद में जो आकुलता होती है, ये किया होता है वॉट एवर, तो उसमें तो फिर वो तो नया कर्म वाला होगा ना।
यस, वो अभी, लेकिन आपको घड़ी खोने वाले कर्म का उदय नहीं आया है वापस, वो तो चली गई, खत्म हो गया, वो कर्म आया उदय में फल देकर चला गया, इट्स गॉन। अब आपके जो उदय में चारित्र मोहिनी कर्म है, वो आपको उसके राग मोह के कारण बार बार स्मृति दिलाकर परेशान कर रहा है।
अच्छा, हाँ, बराबर।
वो अभी घड़ी वाला कुछ, घड़ी तो बची थी तो सत्य ही नहीं है, वो तो टूट कर या कहीं और चली गई, आपको कभी नहीं दिखेगी, अब वो खत्म हो गई, वो इट्स गॉन, इट्स अ गॉन केस।
घड़ी अभी वो घड़ी गई, वो नौ कर्म का वो बात हो गई, बराबर
यस यस नो कर्म वाला खत्म हो गया पूरा खेल।
हाँ।
नो कर्म सामग्री कौन बनाता है? अघातिया कर्म।
हाँ,
तो अघातिया नो कर्म का काम खत्म हो गया।
बराबर, बहुत बढ़िया।
अब जो बचा वो घातिया का बचा, और घातिया कर्म कोई वस्तु नहीं है। घातिया कर्म की कोई वस्तु नहीं है कि घाती चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में हम राग करते हो, ऐसा नहीं है। हम राग करते हैं उसे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय कहते हैं। तो देखो घातिया कर्म, घातिया कर्मों में पराधीनता है, घड़ी जाएगी तो जाएगी, यू कैन नॉट स्टॉप इट। घातिया कर्मों में स्वाधीनता है, क्रोध आया आप स्वाधीन हो, करना है कि नहीं करना है। तो अघातिया कर्मों की स्थिति बड़ी अजीब है कि यार घर में आग लगनी है तो लग जाएगी, या घर में रत्न बरसने हैं तो बरस जाएंगे, आज बारिश होनी है तो हो जाएगी, भले आपने कितनी मेहनत से पूरी साल भर खेती करके इतनी सारी फसल को उगाया, बट नाउ इस पूरे टाइम पर अभी बारिश होके पूरी फसल खराब होनी होगी, यू कैन नॉट स्टॉप इट, राइट। इतना बड़ा छाता तो लगाओगे नहीं आप अपने खेत के ऊपर, राइट। सो जस्ट इमेजिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट फार्मर जिसने पूरे चार महीने मेहनत करके और उसकी पूरी फसल इतनी अच्छी हुई है इस बार कि वो सोच रहा है कल मैं पूरी काट लूंगा, और रात में इतनी तेज बारिश हो गई कि वो पूरी फसल खराब हो गई, लगी लगाई, ठीक है। What can he do? इतना incapable है वो कुछ भी करने के, सामने पानी गिरता हुआ देख रहा है, क्या कर सकता है बताओ, what can he do? एक दो अपने घर में जैसे अम्ब्रेलाज है वो एक दो प्लांट के ऊपर ले जाके रख दे, would that be enough? कि नो, कितने प्लांट बचाएगा वो, क्या करेगा? तो ये जो अघातिया कर्म की सामग्री है ये पराधीन है, इस पे हमारा वश नहीं चलता। हमारे बॉडी में कुछ हो गया, हाँ, हम कितने ज्यादा इनकेपेबल हो जाते हैं, नहीं किसी को भी कोई बीमारी निकल के आती है, कैसे हम यू नो हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता, सोचता ही नहीं है इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के, अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका, कहाँ इसका सोल्यूशन मिलेगा, वी जस्ट गेट द रेफरेंसेस, हमें वो वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए, वहां पर दिखा लीजिए, हम कितने हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट टोटली पराधीन, बॉडी ने बोला ये है मतलब है, अब खत्म हो गई बात, अब क्या करोगे। तो अघातिया कर्म इज टोटली पराधीन, लेकिन जो घातिया कर्म का होता है इट गोज डिफरेंटली, इसमें हम ज्ञानवर्णी कृष्णवर्णी और अंतराय की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें भी पराधीनता है, लेकिन जो मूलभूत कारण है हमारे संसार का वो चारित्र, वो दर्शन मोहनीय और वो चारित्र मोहनीय, ये दोनों में पराधीनता नहीं चलती जीव की, स्वाधीनता चलती है। यदि मंद कषाय का उदय हो तो, तीव्र कषाय के उदय में तो बेसुध है जीव, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वाली। जब तक इस मोह का तीव्र उदय मतलब कषाय लेशिया इनका तीव्र उदय है, जीव अपनी विचार शक्ति को खो देता है, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मैं सोच ही नहीं पाऊंगा गुस्से में, कुछ भी कर दूंगा, बट नाउ यदि मैं शांत हूँ मेरी कषाय शांत है तो फिर मैं डिसीजन लेने में एकदम स्वाधीन हो जाता हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
तो ये बाकी के जो आपने बोला चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय और बाकी के जो तीन है उसमें भी पराधीनता है, फिर ये चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय में ऐसा कैसा है कि उससे स्वाधीनता?
ऐसा 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 है, इसका स्केल बनता है कैसा, हम पूरे छह लेशियाओं को पढ़ते हैं, पांच लेश हम स्केल बनाते हैं अपने परिणामों की, कषायों की तीव्रता से लेकर मंदता का, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइक आई एम अंडर द इम्प्रेशन मैं नशे में हूँ, ठीक है, तो नशे में क्या रहेगा, मैं डिसीजन नहीं बना पाऊंगा अपने, और अभी मैं नशे में नहीं हूँ सो आई कैन मेक डिसीजन, राइट,
बराबर।
मैं ड्राइव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी नहीं लिया हुआ है कोई नशा, बट इफ आई एम अंडर द यदि अल्कोहल पीकर गाड़ी चला रहा हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव सेफली। तो जब भी जीव कषायों के तीव्र उदय में आता है इट लूजेस वो अपनी कैपेबिलिटी टू मेक डिसीजन, उसको लूज कर देता है, वो विचार शक्ति को खो देता है जो ये उपाधि की है, क्या करना क्या नहीं करना भेद ज्ञान की है, ये जितने भी कैपेबिलिटीज है इनको जीव खोता जाता है। तो तीव्र उदय में इसलिए पंडित टोटरमल जी ने लिखा, जैसे नदी का बहाव तेज है तो उसमें तैरना बहुत मुश्किल है, बह जाएगा आदमी, लेकिन नदी तो बह रही है बट उसका बहाव थोड़ा स्लो है तो वो एक पार से दूसरे पार मेहनत करे तो जा सकता है। ऐसे ही ये हंसी खेल नहीं है कि मैंने बोल दिया कि स्वाधीन है तो हम कर सकते हैं। यदि हम भेद ज्ञान करें, तत्व विचार करें, बहुत अभ्यास करें तो कर्म के उदय में भी, चारित्र मोहिनी के निरंतर चलने वाले उदय में भी क्या करना और क्या नहीं करना इसका निर्णय हम कर सकते हैं। बट वो कषाय के मंद उदय की बात है, उसमें स्वाधीनता है।
तो ये बात अज्ञानावरणीय में भी लगा सकते हैं नहीं, जब भी भेद ज्ञान की बात करेंगे तो वहाँ
तो ज्ञानावरणी, तो ज्ञानावरणी में कैसे लगेगी वाली बात, तो ज्ञान में लगेगी नॉट ज्ञानावरणी में। मैं ज्ञानावरणी कर्म का बोल रहा हूँ। देखिए ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के कारण ज्ञान होता है। ज्ञानावरणी उतना ज्ञान बताता है जितना उदित नहीं है। अब जो है ही नहीं उस पर क्या करेंगे हम,
बराबर,
इसलिए वो पराधीन है। जितना उदित है उतना तो पूरा हमेशा निगोजिया का भी स्वाधीन है, हर एक चीज का स्वाधीन है। उदित ज्ञान, उदित दर्शन, उदित वीर्य, ये जितना है उतना तो पूरा जीव का है, और जितना नहीं है उतने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उतना है ही नहीं तो फिर उसमें कम ज्यादा की क्या बात करें। चारित्र मोहिनी कर्म में आवरण भी है चारित्र मोहिनी, हाँ
बराबर,
अंतराय ज्ञानवर्णी और दर्शनावर्णी इनमें आवरण चलता है। आवरण जिसमें भी चलेगा उसमें जितना ढका हुआ है उतने में कुछ आप कर ही नहीं सकते, वो है ही नहीं तो क्या करोगे। लेकिन चारित्र में पुरुषार्थ क्यों चल जाते हैं, क्योंकि इसमें ढकने जैसा कुछ नहीं है, या तो इसमें सही है या फिर विपरीत है। इसमें ऐसा नहीं कि आधी कषाय हो गई कि पूरी कषाय हो गई कि इतनी कषाय ढक गई, नो नॉट दैट वे। चारित्र की पूरी पर्याय चल रही है, अब या तो विभावी चल रही है या सीधी सच्ची अच्छी वाली चल रही है। तो इसलिए ना चारित्र पर हमारी अथॉरिटी है, जितना है उतने पर काम हो सकता है, बट कंडीशन है कि हम बहके हुए नहीं हो, हम इतने ज्यादा नशे में नहीं हो कि वी आर अनेबल टू मेक डिसीजन। ऐसी कषायों का इतना तीव्र उदय नहीं हो कि हम डिसीजन को बनाए। और देखो लेशिया तो मैं बहुत वेगली बोल रहा हूँ, लेशिया के कारण भी ऐसा नहीं है कि हम अथॉरिटी खो देते हैं। नरक में सम्यक दृष्टि जी होते हैं सातवें नरक तक, उनकी लेशिया हमेशा कृष्ण लेशिया होती है। नारकी जीवों की लेशिया कौन सी होती है, कृष्ण लेशिया। लेकिन वो नारकी जीव सम्यक दृष्टि जीव थी, भेद ज्ञान करते रहते हैं सतत, कर नहीं पता अपन को, कभी उनमें लड़ाई के परिणाम आते, ऐसा नहीं वो लड़ते नहीं है कि शांति से बैठ जाएंगे सबको क्षमा कर देंगे, नो दे ऑल्सो फाइट, सब करते हैं, बट वो भेद ज्ञान की उर्मिया उनमें जागृत हो चुकी है, तो वो ऐसे बेसुध होके काम नहीं करते जैसे कि बाकी के लोग कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो उतना उनमें कंट्रोल है, बट कितना है, अनंतानुबंधी के जाने जितना कंट्रोल है। आप प्रत्यक्षानो प्रत्यक्षानो संचलन वाला कोई कंट्रोल नहीं है उनके पास, उतने वो पराधीन है। ठीक है,
तो फिर वहाँ कतर तीव्रता से, जैसे अपन मदमो बोलते हैं अंध हो जाते हैं, तो वो लेशिया वाली बात तो फिर वहाँ लगती भी नहीं होगी ना।
कैसे नहीं लगती होगी, मतलब
मैं जैसे नारकी को हो सकता है कृष्णा लेशिया होने पर भी वो भेद ज्ञान हो सकता है, तो फिर जो छह लेशिया की जब अपन बात करते हैं कसाई की तीव्रता के हिसाब से,
हाँ
वहाँ
तो लेशिया का मतलब होता है कषाय से अनुरंजित आत्मा का जो परिणाम होता है, मतलब ठीक है, कषाय से भींगा हुआ आत्मा का परिणाम। ठीक है, तो जो अनंतानुबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय तीव्रतम होती है। ठीक है, अब हर एक लेशिया में हर एक सेक्टर ऊपर से नीचे बनता है, हम उसको डिवाइड करते हैं, हर एक लेशिया का, हर एक कषाय का तीव्रतम होता है और मंदतम होता है। हर एक कषाय का नंतानुबंधी का तीव्रतम होता है और मंदतम होता है। ऐसे ही अप्रत्यक्ष ख्यानावरण कषाय का तीव्रतम होता है और मंदतम होता है, ठीक है। तो जो नारकी चीज के लेशिया होगी उसकी अप्रत्यक्ष ख्यानावरण का तीव्रतम उदय हो सकता है तो वो भी बहुत होता है, क्योंकि वो कितना है अनंतानुबंधी से -1, जो अनंतानुबंधी का मंदतम उदय होगा उससे -1, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो वहां पर नारकी जीरो के देखा जा सकता। बट ये हम बहुत थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, वास्तविकता में जो नरक का माहौल है वो अलग, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है यहाँ से। बट हम ये समझना चाह रहे हैं कि जीव की यदि उस जाति की कषाय है तो जीव उस जाति का कंट्रोल कर सकता है। सीधी सी बात ये, कषाय के तीव्र उदय में तत्व विचार की बातें नहीं होती, धर्म की बातें नहीं होती, आत्महित के परिणाम नहीं होते, ये इसका कंक्लूजन है। और यदि कषाय मंद हो तो जीव इन कषायों को काटने का उद्यम मंद कषाय में ही कर सकता है।
हाँ बराबर, तो तीव्र छद लेशिया और तीव्र उदय वो दोनों का कोरिलेशन नहीं है, मगर जब भी तीव्र उदय होएगा तभी वी कैन लूज द कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग।
यस 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 यस, तो अप्रत्यक्ष इनके तीव्र उदय में वो सारे काम करता होगा, मंद उदय में छोड़ता होगा, तत्व तो विचार करता होगा, क्या करता होगा नरक का तो कल्पना से ही बाहर हो जाता है। कैसे मतलब इन दैट एनवायरमेंट, मुझे तो यही समझ में, मतलब आत्मानुभूति भी कैसे पॉसिबल है, यही इतनी बड़ी चीज है। एक तो ठीक है वो आगम में मतलब होती होगी, कैसे होता कि दैट इज बियॉन्ड अस, वो हमारी इमेजिनेशन में ही बाहर है वो तो।
क्योंकि नारकी में सम्यक दर्शन होता है तो उसको तो फिर अनंतानुबंधी कषाय है ना, मगर उसमें भी
सम्यक दर्शन होगा तो अनंतानुबंधी नहीं है, फिर नहीं हो सकती।
नहीं नहीं, पहले तो अनंतानुबंधु वहाँ सम्यक दर्शन होता है तो पहले तो अनंतानुबंधी थी और अभी सम्यक दर्शन तो फिर ना।
करेक्ट, सो दैट इज द प्रूफ कि हम कंट्रोल करते हैं अपनी कषायों पर।
तो इतने
तभी वो अनंतानुबंधी के रहते हुए उसको तोड़ पाया।
नारक जैसी वहाँ तीव्र कंडीशंस है, वहाँ भी जीव कर पाता है तो
वो तो अपनी कषायों को वहाँ कंट्रोल करके अनंतानुबंधी को तोड़ देता है।
बराबर, हाँ।
तो यहाँ पर तो हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल है। देखो उसकी तीन कैटेगरीज हम बनाते हैं। एक कैटेगरी तो हमारे परिणामों की विशुद्धि के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि आप सब खाना खाते हो, आप सब घूमने जाते हो, राइट, बट हमारा सहज ही नॉन वेजिटेरियन खाने का मन नहीं करता, ठीक है। ये हमारी परिणामों की विशुद्धि है, अपने आप मन ही नहीं करता, दैट इज नॉट इवन एन ऑप्शन। कोई हमारे सामने खा रहा हो तो हमें एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि यार काश मैं भी टेस्ट करके देख लूं, वी ऑलवेज वांट टू लीव दैट प्लेस,
विचार भी नहीं आता,
एक बार भी नहीं आता, राइट। लेकिन आपके कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनसे रेजिस्ट नहीं होता, उनका मन कर जाता है, राइट राइट, मतलब फ्रेंड्स यानी कि एक्वेंटेंसेस जिनको भी आप जानते हो, होंगे ऐसे लोग, राइट। दे कैन नॉट जस्ट पास थ्रू अ वीक भी नहीं आ रहे, इस वीक तो हमने कुछ खाया ही नहीं, उनके लिए खाना मतलब नॉन वेजिटेरियन खाना, बाकी सब घास फूस। That's the case for them. So, आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि आपकी विशुद्धि ऑटोमेटिकली उस लेवल की है कि उस जाति का परिणाम उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, विदाउट एनी कोई, बिना किसी काम के, बिना किसी पुरुषार्थ के वो हो ही नहीं रहा है, राइट? ये पहला लेवल हुआ। नाउ सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल इज, बट ये जो आलू प्याज जमीकंद वगैरह है ना, ये आप बहुत टाइम से खाते आए हो और आपको बहुत मुश्किल लगी इसको छोड़ने में, राइट? लेट्स इमेजिन दैट, ऐसा है नहीं, बट लेट्स इमेजिन कि कोई है बच्चा, आप हमारे बादशाह के बच्चे, उनके लिए बड़ा टफ होता है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन को नहीं खाने का तो उनको भी बिल्कुल भी नहीं है, they'll not even think about it. They'll not think about smoking. They'll not think about drinking. I mean, that is not even an option for them. ठीक है वो सोचते ही नहीं है बट ये जो बाहर जाकर खाना लाइक यू नो पोटैटोज अनियन ऑल दिस तो यू नो ने कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ खाया है तो इट्स वेरी हार्ड टू रेजिस्ट तो वो उसमें क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं वो उसमें दे टेक द अथॉरिटी तो कई बार इतना हो जाता है कि यार चलो आज तो खा ही लेते हैं राइट सिमिलरली जो लोग रात पे खाना बहुत धीरे धीरे सिस्टमेटिकली छोड़ते हैं चलो अभी 8 बजे तक खाएंगे अभी 7 बजे तक खाएंगे तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंसती है कि वो 9 बजे सोचते चलो यार आज दिन भर नहीं खा पाए आज कर लेते हैं राइट दैट डजंट हैपन एवरी टाइम बट कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है और कभी कभी आप खुद ही कंट्रोल कर लेते हो होता है ऐसा नहीं होता समटाइम्स यू आर एबल टू कंट्रोल इट समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट तो अब इसमें दो केसेस बनेंगे आप एक बार कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए उस पर The reason was कि आपकी तब कषाय तीव्र थी तो अपने आप लगा चलो आज कर लेते इतने दिनों से तो नहीं कर रहे ना आज कर लेते हैं एंड इन एवरी टाइम जब आप कर सकते थे ऑलमोस्ट तब भी आपने दिया चलो सो जाते हैं भूख ही नहीं लगेगी लेट स्लीप वो थॉट ही नहीं आएगा करने का सो दैट्स व्हेन यू टुक द अथॉरिटी एंड आपने वो डिसाइड किया ठीक है एक में तो वो परिणाम ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसमें तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं वो तो अपने आप पर्यायगत योग्यता से वो परिणाम ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसमें तो ना हमने कुछ किया ना कुछ हमारा क्रेडिट है कि हम क्यों नहीं खा रहे कि नहीं नहीं हम बहुत धर्मात्मा है नहीं वो जाति की आपकी विशुद्धि बढ़ गई तो आपको वो मांस वगैरह का विकल्प ही नहीं है बट इस सेकेंड वाली चीज में यू आर नाउ टेकिंग द अथॉरिटी कि नहीं कर रहा है आप लोग उस एज पर पहुंच गए आप लोग उस एक्सपीरियंस पर पहुंच गए कि अब आपके लिए आलू प्याज भी वैसी है जैसे कि बच्चों को मांस वगैरह का नहीं आता हमारे लिए वैसा है बट लेट्स थिंक फॉर बच्चों के लिए उनके लिए स्टिल गेट्स टफ एंड दे हैव टू कंट्रोल अ लॉट यस और नो
हमारी उस प्रकार की विशुद्धि हो चुकी है
आपकी तो उतनी विशुद्धि हो गई कि अब दैट्स नॉट अगेन दैट इज जस्ट एज जैसे उसके परिणाम नहीं आता है इसका भी नहीं आता करेक्ट हम तो एग्जाम्पल में समझ रहे इसको समझने के लिए फॉर हिम दो सिचुएशन है कभी वो कंट्रोल कर पाता है कभी नहीं कर पाता सिमिलरली हमारे ये जो क्रोधमान न्यायलोक के परिणाम अभी चल रहे हैं ये तीव्रतम तो नहीं है और जिसमें भी है जब हमारे परिणाम कषाय तीव्र होती है इंटेंसिटी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते यार मैं अपने आप को रोक नहीं पाया मैंने उनसे बोल दिया वी नो कि आई हैड टू स्टॉप मुझे नहीं बोलना चाहिए था हम जानते हैं हमें हमेशा पता होता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसा बट फिर हमें पता होता है कि आई कुड नॉट स्टॉप मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को यस और नो
समटाइम्स यू वांट टू बट यू कांट
या तो वो तीव्रता है तो जब तक उन कषाय के फ्लो में मंदता है तब तक यू हैव ऑल द अथॉरिटी दैट यू चूज आप चूज करते हो कि आपको गुस्सा करना नहीं करना इससे ये बोलना कि नहीं बोलना ऐसा करें कि नहीं करें यहाँ जाए कि नहीं जाए राइट नाउ थर्ड लेवल इज दैट थर्ड लेवल वो है जो कि बियॉन्ड है वो बच्चा जो आलू प्याज इतनी मुश्किल से छोड़ रहा है वो कल को बोले कि मैं एक ही बार खाऊंगा राइट और वो भी मैं शक्कर नहीं खाऊंगा नमक नहीं खाऊंगा ऐसा मैं रसों का त्याग करके करूंगा No, this is beyond him again. ठीक है जैसे उसका वो ऊपर के परिणामों को नहीं करने उसने कोई मेहनत नहीं करी है ऐसे ही नीचे के परिणामों को करने की मेहनत वो करेगा तो वो ज्यादा हाथापाई हो जाएगी दैट्स अगेन बियॉन्ड हिज लेवल वो उसके लेवल में नहीं है अभी तो वो वाले परिणामों को जबरदस्ती करना उसमें भी कोई मतलब अभी नहीं है इसलिए अपनी शक्ति का हमको विचार करना चाहिए अपनी शक्ति से कम नहीं और अपनी शक्ति से ज्यादा नहीं दोनों ही अपराध है और ये आजकल बहुत होता है जैसे कि मेरी शक्ति है दान देने की लाइक आई कैन टेक दान कि मैं लाइक आई कैन गिव लाइक 1 लाख रुपीज इन दान ठीक है बट अ प्रॉब्लम ये कि सब लोग आसपास में 50-50 लाख दे रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा कि क्या होगा ऐसे तो अपनी शक्ति से ज्यादा तो आगम में स्पष्ट है कि दान देना ठीक है तो ये बताया जाता है कि कम से कम दान इतना देना चाहिए राइट, बट आगम ने अपने जैन दर्शन में ये भी स्पेसिफाई किया है कि ज्यादा से ज्यादा दान कितना लेना चाहिए, क्योंकि हाँ करेक्ट वन, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि हमारी शक्ति भी और हम खींचा तानी करके करना चाहेंगे, ठीक है, हमें पता है कि हम बह जाएंगे कषाय के तीव्र हृदय में, तो ये जो मैं 50 लाख का दान दे रहा हूँ 1 लाख के दान की वजह, 1 लाख के दान की ताकत होने पर मैं जो 50 लाख की बोली ले रहा हूँ, ये कषाय के मंदोदय में है या तीव्र हृदय में है?
वैसे तीव्र उदय भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई दफा हमें वो मान कषाय का तीव्र उदय है तो
तीव्र उदय ही है, जब भी शक्ति से ज्यादा या शक्ति से कम होगा तो वो तीव्र उदय होगा, जब वो शक्ति में ही है तब तक वो मंदोदय है, वो बिना खींचातानी के होगा, बिना आकुलता के होगा, बिना परेशान हुए होगा, तो बेनिफिशियल तो 50 लाख देना बिल्कुल है ही नहीं आपके लिए कि कुछ अच्छा होगा, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, लेकिन ये शक्तियां हमें अपनी अपना स्वयं का सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके परिणामों में बंद और मोक्ष की व्यवस्था इंटेंसिटी से चलेगी, तो कर्म बंद इससे नहीं होगा कि कितने सारे हमने पैसे दिए या कितना कम खाना खाया है, कितनी बार खाना खाया, नो, जब आपने 10 बार भी खाया है आपके परिणामों में कितनी उदारता थी, कितने खेले खेले प्रसन्नता के परिणाम थे, आपने 1 बार भी खाया है लेकिन कैसे तड़प तड़प के आप दिन भर रहे हो, इन दोनों से कर्म बंद होगा, नॉट कि 1 बार ही खाया, ये ऐसे नहीं होगा, जैसे आप लोग ने देखा होगा जब प्रशिक्षण पर आते हैं तो कई लोग 10 दिनों तक करते हैं, फिर 11वें दिन पूरा जुलूस निकलता है, राइट, दे डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 10 डेज, यस और नो? मैंने देखो गुजरात में तो बहुत चलता है, राइट, गुजरात में तो भयंकर, श्वेतांबरों में तो बिल्कुल एकदम लास्ट लास्ट से शायद किसी बच्चे की डेथ भी हो गई थी इस कारण से, बहुत कवरेज में भी आया था, न्यूज में भी बहुत सब लोगों ने बोला था कि जिन लोग क्या करते हैं, राइट, तो यदि किसी को लगता है कि ऐसे करने से कुछ होता है तो वो बहुत बड़े धोखे में, हाँ कुछ साता बंधेगा क्योंकि यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग, ठीक है, लेकिन आपके परिणामों की उज्जवलता को यदि आप नापते हैं और यदि आप परेशान हो रहे हैं पूरे टाइम, इतनी भी ताकत नहीं आपको 10 दिन के आप मंदिर तक चले जाओ चलकर, तो ये सारे तप करना तो बड़े बड़े आचार्यों के काम है, ये 11वीं प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा, 5वीं, 4थी, 3री, दूसरी, क्योंकि प्रोषधोपवास प्रतिमा में उत्कृष्ट जो प्रोषधोपवास प्रतिमा होती है, राइट, प्रोषध उपवास जो उत्कृष्ट होता है उसमें क्या होता है, आपने पढ़ा प्रोषध के बारे में, कोई बताएगा क्या होता है उत्कृष्ट जो प्रोषध होता है?
वो 48 आवर्स तक अगले दिवस वो एकटाणा करते, फिर सारा दिन, दूसरे दिन सारा दिन उपवास होता है और फिर नेक्स्ट डे लंच तक वो नहीं खाते, 48 आवर्स का होता है और वो
करेक्ट वो उत्कृष्ट हो जाता है,
अंतर्मुख होने का प्रयास करते हैं,
मतलब सी जो उत्कृष्ट है वो भी 3 डेज का प्रोसेस है, राइट, और वो 5वें गुणस्थान वर्ती के लिए है, ये सारे जो तप थे ये तो महामुनिराज लोग करते थे, अभी काल छोटा है, कालहीन है, सहननहीन है, हमें कुछ तत्व ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि क्या विज्ञान होता है, और डायरेक्टली हम अपने बच्चों को बता दें, इनको बता दें कि बेटा हम उनको 10 दिन कुछ नहीं खाएंगे तो सीधे यहाँ होगा, ये होगा, वो होगा, सो इट अगेन कम्स डाउन टू पुण्य के बंध में जाते हैं और पाप का बंध करके भयंकर हो जाता है, बहुत होता है, तो ये वाला यहाँ पर टॉपिक हमको लेना है कि ये जो भी कर्म से रहित अवस्था या बंध अवस्था हो, तो कर्म से रहित अवस्था की पॉसिबिलिटी कर्म बंध अवस्था में ही होती है उसका पुरुषार्थ, कैसे होती कि वी टेक द चार्ज, हमारे परिणाम हमारे हाथ में है, चारित्र मोहिनी संबंधी हम डिसाइड करते हैं क्या है क्या नहीं है, राइट, नहीं तो वेद ज्ञान पॉसिबल ही नहीं होगा फिर,
अनुभव जी, मैं यहाँ एक क्वेश्चन, ये तो एक दूसरे से बात हो रही थी, तो वो आपने बोला कि ये जो सितंबर का आपने एग्जाम्पल दिया, तो वो सितंबर में अभी वो पता वो आम बेल करते हैं, वो आपको तो पता है वो रस पर त्याग का होता है ना, तो उन्होंने ऐसा होता है कि पता नहीं एक करे फिर एक उपवास और दो करे दो उपवास वगैरह ऐसा करते हैं, मगर सब जो वो मिथ्या दृष्टि तो हम सब है ही, तो वो एक बोलते वो करते हैं, तो फिर वहाँ वो ऐसे इसमें भी तीव्रतम वो क्या है कि लेना चाहिए कि वो बिकॉज दे आर यूज टू डूइंग दे डू इट के यहाँ उसके परिणाम का।
देखिए गुरुदेव जी की भाषा में बोले तो वो तो श्वेतांबरों को बोलते थे कि लाइक मतलब बहुत ही, वो तो गुरुदेव जी तो बहुत कुछ बोलते थे श्वेतांबर के बारे में कि उन्होंने जैन शासन को ऐसा मलिन किया है। देखिए पहले तो उनका जो कुछ भी इंटेंट है कोई भी क्रिया का, द इंटेंट इज ओनली वन, किससे पुण्य बनता है, मोक्ष कहीं पर इंटेंट ही नहीं है कुछ भी। अगर उपवास हो रहा है, पक्षियों को दाना देना है, देराकर में जाना है, रोज पूजन प्रक्षाल करनी है, एनीथिंग, स्टोरी वहीं से शुरू होती है कि बहुत पैसा मिलता है, दान से समृद्धि आती है, शरीर स्वस्थ रहता है, राइट, कुछ भी वॉट एवर दे डू इंटेंट इज वन पुण्य।
हाँ, राइट, वो पुण्य से बहुत मेजर करते हैं, वे तो मैंने देखा,
ठीक है। हाँ तो अब दो चीजें हैं, पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय के फल से जो की जाने वाली क्रियाएं हैं, राइट, जो पुण्य के लिए करते हैं, इंटेंट जहाँ पुण्य होता है, वह दो काम होते हैं, एक तो आपकी कषाय डेफिनेटली तो मंद है, मतलब आप इतना कर रहे हो कि आप नहीं खाओगे तीन दिन, तो आपकी जो मेन ये वाली एक शरीर संबंधी जो वो वाला कषाय है वो मंद है। दो दूसरी कषाय बहुत ज्यादा तीव्र है, मान संबंधी या फिर इच्छा, राइट, इच्छा तो हमारी तीव्र है उस टाइम, भयंकर तीव्र है
वो इच्छा, तो तीव्र, वो इच्छा तीव्र वो नहीं समझ में आया थे वो। अरे? एक साइड आपने बोला कि वो शरीर संबंधी कम है,
टोडर मंदी ने लिखा है इसको मोक्षण प्रकाशक में कि एक कषाय के तीव्र उदय में दूसरी कषाय का मंद उदय हो जाता है, जैसे कि सैनिक लड़ने के लिए गया, ठीक है, तो उसको अब तो वो अपनी गर्दन भी कटवा लेगा हंसते हंसते, तो उसको शरीर के प्रति का त्राग कम हो गया है, लेकिन जीतने का जो मान है, जीतने की जो इच्छा है वो बहुत तेज हो गई है, राइट। ऐसे ही हम लोग जाते हैं सुबह से रात तक काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो हमने सब मोह माया छोड़ दी है, क्या है शरीर की चिंता, लेकिन हमें इच्छा है कि चलो यार मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, तो परेशान होता है लेकिन किस लिए, फॉर समथिंग एल्स, और दुखी नहीं होता, फिर वो खुश रहता है, ठीक है जो भी हो रहा है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इसका जो सिंपल सा लॉजिक है, इसका सिंपल गणित है, वो ये कहते हैं कि जब हम पुण्य क्रियाओं में पुण्य के लिए लगते हैं, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं सबको दान दूंगा, मैं ये सब करूंगा, तो निश्चित उसके परिणाम तो भद्र हुए कि वो अच्छा काम करे और लोक में प्रशंसा को ऐसी पाई गई, इतने बड़े दानी है, ये तो इतना अच्छा करते हैं, इन्होंने ये खुलवाया, इन्होंने वो खुलवाया, ये किया वो किया, एक बार खाते ये नहीं करते वो नहीं करते, बट एट द सेम टाइम उनको जो परिणामों में घाटिया कर्म बदलेंगे वो मिथ्यात्व की मुख्यता के साथ बहुत तीव्र घाटिया कर्म बनेंगे, अघातिया कर्म में सारी प्रशस्त प्रकृतियां जाएंगी, क्योंकि बाहर में जो कषाय चल रही है वो भैया मंद चल रही है, वो सहजता से वो कर रहा है, ये भोले जीवों की बता रहा हूँ, जो भोले हैं जिनको यही बताया गया बेटा ये करो, उनके गुरु साहब ने जो बोल दिया बस वो वही कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते, भोले जीव है क्योंकि भद्र परिणामी है, वो जैसा बोल दिया गुरु ने वैसा कर लिया उन्होंने, गुरु बोल दे कि भाई समाधि ले लो, अब उसकी भली उम्र होगी ज्यादा बट वो समाधि ले लेगा, तो गुरु की आज्ञा के अधीन कर रहे हैं, बट इंटेंट क्या है कि गुरु ने बोला तो उससे अच्छा होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो परिणामों में तो भद्रता है तो ठीक है पुण्य का बंद होगा, बट पुण्य के बंद का मतलब क्या है, जितने भी लोग आज बिलीनियर्स पैदा हो रहे हैं वो सब पाप के उदय में हो रहे हैं कि पुण्य के उदय में हो रहे हैं, हाँ, यदि मेरे फैमिली में पूरा फैमिली बिजनेस स्लॉटर हाउस का है और मेरे बंगलोज इन ऑल द कॉन्टिनेंट, और उस घर पे एक बच्चा आता है इतनी बड़ी फैमिली में, तो पुण्य के उदय में आ रहे हैं, पाप के उदय में आ रहा है?
पुण्य का उदय में।
लेकिन आगे आप क्या करें उस पुण्य के उदय का? वो
खेलेंगे
तो स्लॉटर हाउस में ही, वो जाएगा तो वो गैम्बल है, उसका तो इतना बड़ा कैसीनो है, वो क्या करेगा? उसकी तो इतनी बड़ी होटल है, वो क्या करेगा?
पुण्य हुआ ना।
करेक्ट करेक्ट। सो पुण्य के उदय का और पुण्य के बंध का कषाय की तीव्रता और कषाय की मंदता से ज्यादा को रिलेशन नहीं है कि मेरे पुण्य का उदय है तो मेरी कषाय मंद रहेगी। नो, पुण्य का उदय तीव्र हो और उसमें कषाय का उदय भी तीव्र हो सकता है। जैसे आज मोस्टली है, सब लोग अमीर है लेकिन सबके अंदर से कितने आंखों लेते हैं, सब डिप्रेशन में, सबको नींद नहीं आ रही, सब काउंसलिंग ले रहे हैं, राइट? ठीक है। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं पुण्य के इंटेंट की जाती है, उनका बेस, उनका इंटेंट फ्लॉड होने के कारण वो घाटिया में तो भयंकर उसमें तीव्र गंदे गंदे ही बन रहे हैं। तो समझने वाली बात इसमें इतनी है सिर्फ कि हम ये जो बोलते हैं क्रोध कर लिया, क्रोध आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सामने वाले की बात ही कर रहे हैं। हम सब मुमुक्षु हैं, हमको वायुश्री मिले, हमको जिनवाणी का अभ्यास हुआ, तो नाउ अब हमारी परिणति में जो भी होता है वो कर्म पर ब्लेम नहीं दे सकते। मैं अघातिया कर्म के उदय की बात नहीं कर रहा हूँ, घातिया कर्म में जो भी कषाय के परिणाम है इसके कर्ता जीव है, ना कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में ऐसा हो गया। नो, यू डिड इट, आपके पास अथॉरिटी थी कुछ करने की कुछ नहीं करने की।
अगर जीव के पास वो अथॉरिटी नहीं होती तो फिर वो कभी छूट ही नहीं सकता ना।
वही तो, इसलिए तो मोक्ष मार्ग, इसलिए तो उपदेश किसको है? जिसकी मंद कषाय हो उसको, विशुद्धि लब्धि जिसके प्रकट हुई है उसको। मतलब विशुद्धि लब्धि वाले की कषायों पे कंट्रोल है तभी तो उसको काटने का उपदेश है, नहीं होता तो क्या बात की। और कषाय पर कंट्रोल मतलब पुद्गल चारित्र मोहिनी कर्म पर कंट्रोल नहीं, वो तो जुदा द्रव्य, उसका क्या करना, दिखता भी नहीं है। आपके परिणाम भी, आपके परिणामों के रचनाकार आप हैं, ये वाली बात या इंटेंट है। यहाँ पर सकल कर्म का जो अभाव मोक्ष अवस्था है, इसका मतलब ये है कि आत्मा के अंदर कर्म को नष्ट करने की शक्ति है। कैसे शक्ति है? द्रव्य तो दूसरे द्रव्य को करता नहीं कि गलत कर्म ऐसे नहीं जाता कि आप भी पंखा ऐसे चालू नहीं होता कि आप फैन को टच करो तो शुरू होगा। फैन को शुरू करने के लिए फैन के पास नहीं जाना है, स्विच के पास जाना है, राइट? फैन को टच भी नहीं करना है, फैन को ऑन करने के लिए आप स्विच को ऑन कर दो। स्विच तो फैन से बहुत दूर है, उसमें छुआ भी नहीं है फैन को। हाउ इज इट हैपनिंग कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, आप फैन को घुमाते रहो तो नहीं घूमेगा कॉन्स्टेंटली, आपने एक चक्कर दिया वो एक चक्कर लगा के रुक जाएगा, दैट्स नॉट द राइट वे। सिमिलरली कर्म को काटने के लिए कर्म के पास जाना या किसी और के पास जाना, दैट इज नॉट द वे। जीव अपने परिणामों को खटोले, उस राग द्वेष के परिणाम से ज्ञान को छान ले, उस ज्ञान के परिणाम को पकड़े, तो वो कर्म का वो स्विच वहां पर है, ज्ञान को पकड़ता है, ज्ञान को पकड़ता है तो कर्म अपने आप हलने लगता है। जिस समय वो आत्मदृष्टि कर्म पत्थर कांपते है, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते है। बराबर, किसी के सामने पहले बहुत भजन चलता था, समझ उर्धर कहत गुरुवर आत्म चिंतन की घड़ी है, भव उदधी तन अखिर नौका, बहुत सुंदर सुंदर ये उसका ये बड़ा फेमस है। जिस समय वो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं, ले समझ से काम चेतन, आगे क्या नहीं थे वो भूल गया, ये चेतन अब तुम बहुत समझ से काम लो, क्योंकि आगे या तो अनंत संसार है या फिर मोक्ष है। ये बहुत दुर्लभ घड़ी हमको मिली है जिसमें हमारी चलती है, जिसमें वी आर द क्रिएटर, हम है उसमें, वी कैन मेक व्हाट वी कैन डू, वी चूज टू व्हाट टू डू। ये बाकी जो लोग हैं जिनपे मार्ग नहीं मिला है, वो तो यार चलो ना यार आज मन कर रहा है कुछ खा के आते हैं बाहर, तो आज नहीं यार चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। तो आप देखिए आपके आसपास के लोगों की लाइफ ही ये है, चलो आज किसी शो को देखने जाते हैं, आज कुछ मूवी देखते हैं, वो कंट्रोल में ही नहीं है, जैसी इच्छा होती है वो कर कर वो उसी को लाइफ मानते हैं। यार जिंदगी वो है कि जो हमारा मन कर वो करने को मिलना चाहिए। दे हैव टोटली लॉस्ट द पर्पस, उनकी वो परिणाम ही नहीं है। एंड आप उनको समझाने चाहोगे तो वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी वो विशुद्धि ही नहीं है। राइट, ये इसलिए इसको बुद्धि दुर्लभ कहते हैं, पुण्य को उदय कहते हैं, विचित्र। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमड़ी जो उधर ही समानी। आगे इधर पर ही आएगा इसी गाथा में, ये भैया तुम सुनो, ये वाली मनुष्य पर्याय ऐसा सुकुल जैन कुल, और उस जैन कुल में भी जिनवाणी का मिल जाए, क्योंकि जैन कुल में भी जिनवाणी बहुत दुर्लभ है, बाकी के कुल तो रहने दो। यह मानुष पर्याय सुकुल, जैन कुल भी मिल गया और ऊपर से सोने पर सुहागा जिनवाणी भी मिल गई। यह विधि गए यदि ये भी चला गया तो ना मिले जो सुमड़ी जो उदती समानी। जैसे समुद्र के अंदर कुछ गिर गया तो उसका मिल पाना कितना दुर्लभ है, अब छोड़ो कैसे छोड़ोगे इतने बड़े समुद्र में। ऐसे ये मनुष्य पर्याय और ये जिनवाणी चली गई, तो अभी वी हैव गॉट द चार्ज, अभी हमारे पास चार्ज है।
बराबर, बहुत बढ़िया।
मुझे एक प्रश्न जरा पूछूं।
खबर छे ने के ड्रॉप थई गया छे। આવે ને પાછા તો પૂછી
લેજો, રાગના પરિણમન થાય તો આપડે જેમ કઈ ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં છે, એટલે રાગના પરિણમન બી થવાના હશે ત્યારે જ થવાના છે, તો અહીંયા આપણે કે નો કંટ્રોલ કરવો કસાઈ માટે, કસાઈ નો કંટ્રોલ કરવો, તો ઈ મારે સમજવું હતું જરાક કે ત્યાં કેવી રીતે।
હા બરાબર, ના ના એટલે પૂછ, જરૂર પૂછજો, પણ ડ્રોપ થઈ ગયા છે, લેટ્સ વેઇટ કમ।
સચિનભાઈ ગયા છે લેવા,
એટલે ખબર નથી, સચિનભાઈ ડ્રોપ થઈ ગયા છે એટલે અનુભવજી પણ ડ્રોપ
થઈ ગયા છે।
હા જય જયંત્ર,
હા એક સેકન્ડ હું પાછું કોન્ફરન્સ કરું છું। હેલો અનુભવજી।
હેલો, હા
હા હા હા જી,
ટોપ કે હા
અનુભવ થી ક્વેશ્ચન હે ઉષાબેન કા। હા ઉષાબેન પૂછી,
હા મુજે અભી યે આપને બહોત અચ્છી તરહ સે સમજાયા, ફિર મુજે પ્રશ્ન યે હોતા થા કી આપ હમ બોલ બોલતે હે કી રાગ કસાઈ કો મંદ કરો ઓર કસાઈ કો તીવ્ર હો ન ન હોને દો, તો વહા તો કસાઈ ભી જો રાગ ઓર દ્વેષ સે હોતે વો હોતે હે वो भी ऐसे तो निश्चित क्रमबद्ध में है, तो फिर वहाँ हाउ टू इम्प्लाई दिस के उस हिसाब।
मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, अभी कषाय जो हमारे हैं ये इसके बनाने वाले हम हैं, ये इंटेंट होगा और वो वैसी हो जाए तो वो क्रमबद्ध होगा। देखिए समझे क्या कि आज घर पर खाना कैसा बनना है, ये क्रमबद्ध में है कि नहीं है? राइट, कैसा बनाना है, अच्छा बनना है कि बुरा बनना है? लेकिन आप क्या सोच के बनाओगे खाना, कि आप तो खाना बनाओगे, अच्छा बन गया तो अच्छा क्रमबद्ध में है, बुरा बन गया तो बुरा क्रमबद्ध में है। ये सोच के थोड़ी बनाएंगे कि आज बुरा क्रमबद्ध में बुरा खाना बनाते हैं, या बुरा हुआ तो क्या होगा, वो कोई मतलब ही नहीं, डज नॉट मैटर। क्रमबद्ध में क्या है वो तब तक मैटर नहीं करता जब तक वो हुआ नहीं है। जब होगा तब हमको पता पड़ेगा, अच्छा ये क्रमबद्ध में था आज, और वो इसलिए पता पड़ा कि चल यार आज नमक कम रह गया, कोई बात नहीं क्रमबद्ध में था। रो मत कि यार आज यार नमक कम कैसे रह गया। हाँ, खाना बनाने के पहले ही सोच लो कि नहीं यार आज तो नमक कम रहेगा ऐसा क्रमबद्ध में लग रहा है, तो प्रॉब्लम है। राइट, सिमिलरली ये आज हमने चर्चा इसलिए करी है क्योंकि इसमें मोक्ष में ये बोला सकल कर्मते रहित अवस्था, कर्म से रहित अवस्था होगी सारे, तो इट मीन्स दैट वो वाली अवस्था पॉसिबल है। पॉसिबल है तो किसको पॉसिबल है, वो क्या करेगा, जो अपने परिणामों का चार्ज लेगा, जो अथॉरिटी लेगा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ज्ञाता दृष्टा रहना है, या फिर मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पा रहा हूँ तो डेफिनेटली ये वाले तीव्र गंदे परिणाम तो नहीं करने, मैं देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगूंगा, मैं समय सार का स्वाध्याय करूंगा, मैं स्वाध्याय में लगूंगा, मैं मुनिराजों की भक्ति में लगूंगा, चलो मैं सोनगढ़ होकर आता हूँ, मैं शिखर से होकर आता हूँ। तो यदि वेद ज्ञान में नहीं लग रहा, ज्ञान रूप रहने में नहीं लग रहा, तो अब अपने शुभ परिणामों पे भी चार्ज लेगा कि मुझे यहाँ करना है यहाँ नहीं करना। तो ये जब वो लेगा तो ये करने गया अथॉरिटी से विलफुली, वो खाना बनाने किचन में गया, एंड तब फिर नहीं हो पाया यार चलो यार अभी भूख लगा अभी खाना खाना है, तो ही ट्राइड बट वो नहीं हो पाया, तो वो क्रमबद्ध में था, कोई बात नहीं। बट 10 में से 6 बार तो ऐसा होगा कि आप स्वाध्याय करने बैठोगे, वो प्रोबेबिलिटी जो टिल्टेड है वो आपकी कन्विक्शन को शो कर रही है, वो क्रमबद्ध भी ये बोल रही है कि आप चाहोगे तो क्रमबद्ध में वैसे ही होगा, आप वो चिंता छोड़ दो, बट आप चार्ज तो लो अपने परिणाम का, क्रमबद्ध के भरोसे क्यों जाओगे आप, मत डरो। जैसे खाना बनाने के पहले हम नहीं सोचते क्रमबद्ध में कैसा, जैसा बनेगा वैसा है, ऐसे परिणाम तो हम अपने हिसाब से जैसा हमको चाहिए वैसा करें, फिर जैसा होगा वो क्रमबद्ध में, वो कोई बात नहीं, उसमें की अरे यार हमने तो इतनी मेहनत करी हमारे परिणाम ही नहीं लगते, कोई बात नहीं, वो क्रमबद्ध में है, अभी ऐसे ही होते है, कोई बात नहीं, बट आप एफर्ट डाल रहे हो ना, आप तो करना चाह रहे हो ना, आप तो मोक्ष मार्ग में लगे हो ना, ठीक है इतना काफी है, क्रमबद्ध अपने आप सुनचता जाएगा वो आगे, उसके लिए कुछ नहीं सोचना है हमको। ये वाली बातें हमको आज चर्चा में आ रही हैं, हमको गुरुदेव श्री के द्वारा सुनने मिल रही हैं, यही आगे आने वाले क्रमबद्ध का सूचक है कि वो क्रमबद्ध में यही करना है हमको, और कुछ है नहीं, उसकी सूचना ही ये है। हेलो,
हाँ जी,
हाँ जी,
हेलो,
हाँ अच्छा, हाँ तो यह ऐसे आप यह ऐसे बताते हैं कि यू ट्राई योर बेस्ट, whatever happens was meant to be.
Yes, वो हर एक चीज में ऐसे ही लगेगा, और ट्राई किसमें बेस्ट करना है, हमको परिणामों को करने का ट्राई नहीं करना है, परिणाम तो होते हुए हैं, आप परिणाम को जानने वाले हो, अब दो काम है, या तो होते हुए परिणामों में जो जान रहे हो उस पे जानने में ज्ञान को ऊर्ध्व कर लो कि मैं जानने वाला हूँ करने वाला नहीं, लेकिन अभी हमारी वो भूमिका इतनी स्ट्रांग नहीं हुई तो उसको हम अभ्यास करेंगे, इसको बोलते हैं भेद ज्ञान, कि होते हुए परिणामों में ज्ञान को देखना, राग को नहीं देखना, दैट्स द फर्स्ट लेवल। जब ये वाला नहीं हो रहा है तो सेकंड, होते हुए परिणामों में हे ये उपाधि का विचार करना कि ये परिणाम तो हो रहा है लेकिन ये करने योग्य है कि नहीं है। तो पहले फर्स्ट लेवल, यार देखो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं क्रोध नहीं, मान नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, तो हमको क्या लेना देना, छोड़ो मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ऐसा आत्मा को ऊर्ध्व रखना, ये फर्स्ट लेवल। जब ये वाला हमसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमारी इतनी अभ्यास की दशा नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो सेकंड, यार ये परिणाम तो हो रहा है लेकिन इज इट वर्थ डूइंग और नॉट, ये है, ये उपाधेय है, क्या ये मेरी भूमिका के योग्य है, क्या मुझे करना योग्य है? नहीं मुझे नहीं, ये बिल्कुल मजा नहीं आएगा इसमें, हम तो ऐसा करते हैं स्वाध्याय करने बैठते हैं, राइट? या वहां घूमने में तो कुछ नहीं है, लेट्स गो टू मंदिर एंड सिट देयर फॉर अ व्हाइल, या चलो पार्क चलते हैं, चलते चलते कुछ डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। तो ये वाली चीजें अब आपकी कंट्रोल में है, ये दो चीजें हमको करनी है। फर्स्ट इज दिव्यांग, जिसकी फुल अथॉरिटी चाहे तो आत्मा करेगा, और जब वो नहीं हो रहा है तो अपनी परिस्थितियों की अगली लाइन वो ही आने वाली है। यह विधि जो श्रद्धा तत्व की सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जित सारो, ये हूँ मान समकित को कारण अष्ट अंग जित सारो। क्या उन्होंने पूरा ये बताकर अब वो भूमिका ही वो बना रहे हैं पंडित दौलत राम जी की, अब तुम यू टेक द चार्ज, अब तुम आओ देवशास गुरु के पास, अब आप ये उद्यम करिए कि आप इस सातत्व का बार बार विचार करेंगे कि नहीं नहीं वो तो हमारे हाथ में नहीं, कहीं पूरा हाथ में ट्राई करो, नहीं होगा तो हम देखेंगे कि क्रमबद्ध में नहीं था, बट कब तक नहीं रहेगा क्रमबद्ध में? एक दिन आपने रोटी खराब बनाई, दूसरे दिन बनाई, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन से सीख रहे हो, छठवे दिन तो बेटर बनेगी ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट? तो एक दिन आपने किया मन नहीं लगा, दो दिन फिर किया नहीं लगा, फिफ्थ डे सिक्स्थ डे तो इसमें आएगा ना थोड़ा सा चार्ज, क्रमबद्ध ऐसे ही चलती है, ये यहाँ का पूरा इंटेंट है, ठीक है? अब यहाँ से पूरा व्यवहार मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन का स्वरूप आचार्य देव स्टार्ट करेंगे, आचार्य देव बोल रहा हूँ, पंडित दौलत राम जी यहाँ से शुरू करेंगे, और अब यहाँ से ये अपने परिणामों को कैसे संभालना, इसका व्यवहार पक्ष से बातें शुरू होंगी, ठीक है? तो संकेत का बाहर से स्वरूप चलेगा, तो हम नेक्स्ट क्लासेस को देखेंगे। एनी क्वेश्चन?
बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा,
मतलब द इंटेंट इज कि मोक्ष यदि हम कर सकते हैं, मतलब अपने परिणामों को हम संभाल सकते हैं, यदि वो नहीं कर पाएंगे तो मोक्ष भी नहीं कर पाएंगे, ये कंक्लूजन है मोक्ष तत्व का।
अनुभव जी एक,
हाँ,
एक क्विक क्वेश्चन, तो ये जो हमारी बात हुई कि हमें हमें प्रयत्न तो सही दिशा में करना है, और जैसे आपने बताया कि होवे ना होवे जो भी क्रमबद्ध में होगा उससे हमें कुछ वो नहीं है, पर हम सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं वो इतना ही इम्पोर्टेंट है कि
क्या है
कि उसको हर बार कैसे चकासते रहे, कि जो आपने बताया ये तो बहुत जरूरी कि प्रयत्न करते रहना है, पर हमारा हम प्रैक्टिस जो ये जिनवाणी ने बताई है कि ऐसे ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में हो रही है या तो गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो टाइम टू टाइम कैसे चेक?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और अब आगे की जितनी भी गाथाएं आ रही है, सो तो छंद आ रहे हैं वो इसी का सोल्यूशन है। सी, मुझे बुखार है, इसको कौन बताएगा? कि बाहर का थर्मामीटर बताएगा,
बराबर,
ठीक है? तो दो बातें, सबसे पहले तो बैंक श्री का वो बोल है कि जीव योग्य परिणाम करे और उसका फल नहीं आवे तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, राइट? दैट्स अ फर्स्ट थिंग। तो वो वाली बात हमारा फर्स्ट पॉइंट के लिए है कि हम यदि योग्य पुरुषार्थ करेंगे तो क्यों नहीं परिक्रमबद्ध में वो होगा, क्रमबद्ध में यदि योग्य परिणाम का योग्य नहीं है तो क्रमबद्ध ही खराब हो जाएगी वो बात ही नहीं चलेगी। तो फर्स्ट थिंग कि हम परिणाम करेंगे तो काम होगा, देयर टू ट्राई इनफ। सेकेंड, अब आपका क्वेश्चन है कि इसका पैरामीटर क्या है कि जो हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन पर है, हम हाउ डू वी जज कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? तो अब वो इसके आगे देंगे कि इसका जो इसका थर्मामीटर पूरा रहेगा, इसका पूरा जज करने का जो स्केल बनेगा वो हमारी बाहर की, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि हमें मांस वगैरह खाने का नहीं आता, तो हमारा कषाय का लेवल इतना गिर गया है या विशुद्धि का लेवल इतना उड़ गया है, बढ़ गया है, ऐसी अब यहाँ पर आगम हमको कुछ पैरामीटर्स देगा, क्या आपके ऐसे परिणाम होने लगे हैं? यदि ऐसे परिणाम आपके उड़ते हुए हैं, मतलब आप तत्व ज्ञान पर सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि जिस जिस हम भूमिका में आते हैं उस जाति के परिणाम अपने आप होने लगते हैं,
बराबर है।
हम डिस्कशन शुरू करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, और इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये हमारे को एक सेल्फ इवैल्यूएशन में बहुत हेल्प करता है कि यार हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम करे तो जा रहे हैं, बट उसका कोई फल भी है कि नहीं है, बहुत सो वी विल सी नेक्स्ट, उसकी जो नेक्स्ट लाइंस है वो इसी को बताने के लिए पूरा चलेगा आगे का काम, कि जिसको ऐसे
अच्छा।
परिणाम होने हैं तो उसकी क्या चलता है, वो बार का पैरामीटर है। ठीक है,
बहुत अच्छा।
उसके लिए सबसे सिंपल ये है कि गुरुदेव श्री का यदि हम जीवन देख लें तो वो उसके उनके था जीवन, तो उनके जीवन में जो जो होता है वो हमारे जीवन में भी होने लगे। उससे बड़ा तो कोई वो कुछ होगा नहीं, राइट। ऐसे किसी भी ज्ञानी का जीवन, टोडरमल जी का, किसी का भी, उनकी तो वो ही पैरामीटर है। दूसरा कोई स्केल नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक तो आत्मा अमूर्तिक है तो दिखेगा नहीं, उसके परिणाम भी अमूर्तिक है, तो बाहर से यही पता पड़ेगा कि इसके परिणामों में उज्ज्वलता कितनी है। तो वो इससे नहीं कि इतना दान देता है, इतना कम खाता है, नो, उज्ज्वलता का लेवल ही अलग है। वो ऐसे जैसे नहीं होगा कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे उसका।
बहुत अच्छा,
चलिए ठीक है, चलिए हम जो माने खुशी करते हैं। ओके, मीठी मीठी है जो मैं बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन भाई माँ को वंदना शत आस।